लोग हमेशा फिकी सवाल पूछते हैं हम लोगों से, एक बकरा सबकी तरफ, मियाँ की तरफ से, मरने वालों की तरफ से, आप कुछ नहीं पूछेंगे ऐसा, ये सब कुछ आपको बताया जा चुका है, एक एक मौजू पे बात मौजूद है। इस वक्त आज हमारा मौजू रूह और तकाजे है, मसाइल नहीं है, फिक नहीं है, इख्तलाफी बातें नहीं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कुर्बानी क्यों करें, लिखिए। कुर्बानी करने और ईद मनाने को हमने सिर्फ गोश्त की मुख्तलिफ रेसिपीज़ बनाने, खिलाने और खाने का त्यौहार समझ लिया है, हालांकि ये एक बहुत अजीम इबादत है। इस बार हमने इंशाल्लाह कुर्बानी का दिन या कुर्बानी उसकी रूह और स्पिरिट के साथ करनी है। माशाल्लाह जो लोग सीरत इब्राहिमी के तकाजे की सीरीज सुन रहे हैं, क्या है ये? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक बूढ़ा बाप, दौ से मांगा हुआ एक कमज़ोर बच्चा, और बीच में ज़िबा है। ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदे का एक बड़ा कड़ा टेस्ट था, क्या वो अल्लाह की खातिर सब्र करेगा, क्या वो अल्लाह के लिए शुक्र करेगा, क्या वो दिल को प्यारी चीज़ अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर देगा। अल्लाह खुद कहते हैं बलाउन अजीम। स्टूडेंट्स तो हमेशा ही पेपर के बारे में कहते हैं कि बड़ा मुश्किल पेपर है, लेकिन अगर पेपर बनाने वाला कह दे कि पेपर बड़ा मुश्किल है, तो उसके मुश्किल होने में क्या मुश्किल होगी। अल्लाह ने कहा यह बड़ा कड़ा इम्तिहान है, तो कैसे फिर ये इम्तिहान नहीं होगा। आप मैं अपनी ज़िंदगी को इसके अंदर रख कर देखें तो हमें इसका यकीन आ जाता है कि ये आम लोगों के करने वाली चीज़ नहीं थी। कुर्बानी आपको मुझे ये सिखाती है कि अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए रास्ते की हर रुकावट को दूर कर दो। बेटा और माल, आप देखिए हमारा ईमान क्या कहता है। अल्लाह के नबी की हदीस हमने पिछले सेशन में भी देखी थी कि जब तक किसी को अल्लाह और उसका रसूल उसके माल जान बाकी चीज़ों से प्यारा ना हो जाए, और तब तक वो ईमान की रूह को नहीं पा सकता, तो कुर्बानी बात है इस बात की कि अल्लाह तू बेटा मांगता है, बिस्मिल्लाह, एक बेटा नहीं 7 बेटे कुर्बान करने को तैयार हूँ। तो कुर्बानियाँ आपको मुझे सिखाती हैं उस बेटे और बाप की याद दहानी कराती हैं, वो इस हुक्म पे कुर्बान हो गए। हम तो बच्चे को दीनी स्कूल में दाखिल करना हो तो हमें ऐसे लगता है पहाड़ है। हम भी उसी जन्नत में जाना चाहते हैं जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाते थे, चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन हमारा हाल क्या है कि हवस छुप छुप कर सीनों में बना लेती है तस्वीरें। अगर ख्वाहिश का बुत कट जाए ना, तो कुर्बानी देना बड़ा आसान है, फिर बकरा छतरानी ऊँट क्या कुर्बानियाँ भी करें, बेटा भी कुर्बान करना आसान हो जाता है, बिलीव में। लेकिन बीच में ख्वाहिशात हैं और हमारे कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, हमारे बच्चे हमारे वीक पॉइंट हैं, हमारा माल हमारा वीक पॉइंट है, हमारा हर फैसला आप देखिए जाके ख़त्म होता है ना, तो माल पे ये चीज़ की तो माल का क्या होगा, इधर चले गए, इवन हम सब यहाँ रह रहे हैं अपने प्यारे मुल्कों को छोड़ छोड़ कर, तो इसमें भी मनी मैटर्स ही हैं, यहाँ भी आराम है, यहाँ भी आसाइशें हैं। हम अपने बच्चों के रिश्ते भी करते हैं, आप उनके लिए कोई प्रोफेशन भी ढूंढते हैं, तो उसमें भी माल है, हालांकि अल्लाह ने रिस्क अपने हाथ में रखा हुआ था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि सलामुन अला इब्राहिम, शाबाश है इब्राहिम को, कमाल कर दिया इब्राहिम ने। फलम्मा अस्लमा, वो दोनों बाप बेटे मुसलमान हो गए, जैसे सूरज चांद सितारे मुसलमान हैं, ये दोनों मुसलमान हो गए, नो रिजेंटमेंट, कोई क्वेश्चन नहीं। और ये नहीं कहा बाप बेटे ने कि अब्बा एक दफ़ा और ख्वाब आ ले, ज़रा डबल चेक कर ले, हम 10 दफ़ा डबल चेक करते हैं, फिर एंड पे कहते हैं नहीं अभी नहीं फिर कभी। याद रखिए, जब किसी कुर्बानी का, जब किसी नेकी का मौका आए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये हाजी नहीं पढ़ते, ये आपने और मैंने भी पढ़ना है। हमारे शरीक ही इतने कोने कोने पे तो एक खड़ा है हमारे ईमान को लेने वाला। अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी को हमारे लिए एक मिसाल बना दी, बिज़िब्ख नज़ीम, ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी, क्योंकि एक बहुत बड़े जज्बे की कुर्बानी थी। और देखिए अल्लाह ने इब्राहिम को खलील चुना ना, तो मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है, तो अल्लाह ने फिर इब्राहिम की मोहब्बत पर हाथ रखा कि बेटा दो। आप समझते हैं, मोहब्बत जिससे होती है ना, आप उससे उसकी मोहब्बत मांगते हैं। शादी होती है ना, तो शौहर के घर बीवी जाती है तो सारे माँ बाप और बहन भाई और वो अपना मैके की कुर्बानी देकर जाती है। شوہر کی محبت اپنی محبت چھوڑ رہی ہے. یہ چیزیں زندگی میں آپ اور میں دیکھتے ہیں. اور ابلیس سے یہ نہیں ہو سکا تھا, وہ انا کا شکار ہو گیا تھا. سجدے تو اس کو بھی بڑے پیارے تھے, لیکن اس کو اللہ کا حکم پیارا نہیں تھا. تو بات وہی ہے کہ چومی بھی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ. میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ڈرتا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے تقاضے کیا ہے, تو یہ قربانی آسانی سے نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلما اسلما, اور یاد رکھیے کہ بندہ ایک بار نہیں مسلمان ہوتا, بار بار ہوتا ہے. آپ پیدا ہوئے تھے تو مسلمان پیدا ہوئے تھے, پھر آپ کے کان میں اذان دے کر آپ کی مسلمانی کو پکا کیا گیا. اور کراچی کے کلچر میں جو ختنے ہیں نا, اس کو مسلمانی کہتے ہیں. آپ میں سے شاید نہ بتاؤ کسی کو, اس لیے میں بتا رہی ہوں. وہ کہتے ہیں ختنے کرواؤ بچے کہ یہ مسلمانی ہو گئی. یہ بھی ابراہیم کی سنت ہے. ابراہیم کی جو بڑی بڑی سنتیں لوگ اپناتے ہیں, اس میں یہ سب ہے, بچے کے بال کاٹنا اور اس کی ختنے کروانا, گھٹی دینا, یہ کچھ. لیکن اس وقت جو بات ہے وہ کیا ہے کہ جتنا زیادہ آپ اس کی روح پہ نظر رکھیں گے, آپ کی اگلی زندگی ٹھیک ہوگی. آپ کہتے ہیں عید کا دن کیسے گزارے, میں آپ کو کچھ اور کہنا چاہتی ہوں. عید کے بعد کے دن کیسے گزارے؟ قربانی ایک دن کی قربانی نہیں. دیکھیے استاد ایک دن سبق پڑھاتا ہے تو پھر کہتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا. یہ تو نہیں ہے کہ استاد نے پڑھایا تو یاد ہے اگلے دن بھول گیا. یہ جو ہمیں بار 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 یہ فلما اسلما والا حکم بھول جاتا ہے نا, تو لکھیے اللہ دن میں کئی بار ہمارے اسلام کو رینیو کراتا ہے. بس آپ نے شناختی کارڈ بنوایا, وہ کہتے ہیں جی یہ 5 سال کے لیے. آپ یہاں پیرس میں رہتے ہیں, آپ کو ہو سکتا ہے شروع میں یہاں کا ریزیڈنٹ کارڈ ملا ہوگا. ہر سال رینیو ہوتا ہے گرین کارڈ لوگوں کو جب ملتا ہے تو ہر سال رینیو ہوتا ہے. کوئی کارڈ 2 سال کے بعد, کوئی 3 سال. کبھی ویزا لگاتے ہیں, وہ آپ کا 1 سال کا لگاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں میں پرماننٹ ریزیڈنسی چاہیے, پھر آپ کو بلو پاسپورٹ چاہیے, ریڈ چاہیے. بار بار یہ جو دوبارہ دوبارہ چینج ہوتے ہیں نا, اب یہ کاغذی کاروائی میں ڈاکیومینٹس میں تو ایسے آپ کا لائسنس آپ کو ایک دفعہ مل جاتا ہے, پھر سردیوں میں آپ کو برف پہ گاڑی چلانے والا لائسنس بھی دکھانا پڑے گا. ہر دفعہ یہ جو رینوویشن ہوتی ہے یہ فلما اسلما ہے. اللہ کہتے ہیں پچھلے سال بھی تم نے قربانیاں کی تھیں, تو ذرا چیک تو کرو کہ اس پورے ایک سال کے بیچ میں کتنی دفعہ فلما اسلما پہ عمل ہوا. تو ایک جملہ لکھ لیجئے, اسلما کیا ہے؟ ایک حکم سے دوسرے حکم تک. فجر کی اذان ہوئی, الصلاۃ خیر من النوم کی پکار لگی, اللہ نے آپ کو ایک ڈاکیومنٹ بھیج دیا, جاؤ سائن کر کے آؤ, ہو مسلمان. فجر پڑھی, الحمدللہ ہم مسلمان ہو گئے. ظہر تک بیچ میں کتنا وقت ہوا؟ دوبارہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی پکار لگی, جاؤ اٹھو. آپ نے اٹھ کر ظہر پڑھی تو الحمدللہ. تو کیا پتہ چلا؟ اسلام ہمارا رینی ہوتا ہے بائی پارٹس, ایک حکم سے دوسرا حکم. اور جو حکم نہ مانا اس پہ کفر, جو نماز نہ پڑھی اس پہ کراس لگ گیا. تو آپ میں خود دیکھ سکتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارا اسلام حکم سے حکم تک رینیو ہوتا ہے, تو کیا آپ اور میں کسی وقت مسلمان تو کسی وقت کفر پہ تو نہیں ہوتے؟ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. وہ باپ بیٹا اپنی جان دینے اور باپ جان لینے پہ تیار ہوا. دیکھیں جان دینی جتنی مشکل ہے نا, اتنی جان لینی بھی مشکل ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ جو لوگ کسی کو قتل کرتے ہیں وہ خود کیوں نہیں غم سے مر جاتے بعد میں, ایسی ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا امتحان لیا, فَاتَمَّهُنَّ وَاِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. جب بھی اس کے رب نے ابراہیم کو امتحان میں ڈالا, ابراہیم پاس ہو گئے. سارے امتحانات میں پاس, کوئی سپلی نہیں آئی, کوئی پراکسی نہیں لگی, کوئی ان کو دوسرا سال نہیں لگانا پڑا. ہم اپنی عید القربان کے موقع پر یہ سوچے, اللہ کو تو نہ جانوروں کا خون ملتا ہے اور نہ کچھ, تو دیکھیے کہ عید الاضحیٰ کا مقصد کیا ہے. رضا الہی کی طلب بھی ہے, تقویٰ کا حصول بھی ہے, اور سنت ابراہیمی کو جاری بھی رکھنا ہے. سمعنا واطعنا کا ثبوت بھی دینا ہے. اور عید الاضحیٰ کیا ہے؟ حاجیوں کے لیے تکمیل حج کی نشانی ہے, یعنی حج پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد. اسی طرح باہمی اتفاق اور اتحاد کا مظہر ہے, ایک دوسرے کے حالات سے آشنائی ہے. عید کے دن سب گھروں سے نکل کر کھلی جگہوں پہ جمع ہو جاؤ, सारे शहर में कितने मुसलमान हैं पता ही उस दिन लगता, नॉन मुस्लिम मुल्कों में रहते हुए। इसी तरह नमाज ईद मुसलमानों के रब के आगे इज्तमाई मनाजात का दूसरा नाम है। ये सारा कुछ मिलता है तो फिर जाकर कहीं आप या ईद की कुर्बानी देते हैं, ईद वाले दिन जो आप करते हैं, ये अल्लाह सुबहान तआला की सुन्नत है। तो बात यह है कि अल्लाह ताला आपको मुझे वो तकर्रुब देना चाहता है, वो कुर्ब देना चाहता है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम उसके आगे ईद के दिन भी झुको और उससे ताल्लुक़ रखो। सही बुखारी की रिवायत है 5545, बरा बिन आज़िब से रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आज यानी ईद उल अदहा के दिन की इब्तदा हम नमाज ईद से करेंगे, फिर वापस आकर कुर्बानी करेंगे। जो इस तरह करेगा वो हमारी सुन्नत के मुताबिक करेगा, और जो शख्स नमाज ईद से पहले ज़िबा कर देगा तो इसकी हैसियत सिर्फ गोश्त की होगी, यानी सदका दिया उसने बस, या गोश्त खा लिया। जो इसने अपने घर वालों के लिए तैयार कर लिया है कुर्बानी वो कतन भी नहीं। क्या फ़र्क है भाई, ज़रा सा नोट करें, क्या है भाई? पैसे दिए दिए, कसाब बुलाया बुलाया, और बकरे को दो चार दिन घर में रखा तो रखा, सब रखा ना, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ ईद की नमाज से पहले और बाद का फ़र्क है। पहले किया ना, को बाद में तो नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसी ही कि आप नमाज के वक्त से पहले ही नमाज पढ़ रहे हैं ना, बाद में थोड़ी पढ़ रहे हैं। कई लोग कहते बाजार जाना पढ़ लो, नहीं नहीं आजकल नॉर्वे में आपको तो फजर का टाइम बहुत डिस्प्यूटेड है, रातें इतनी छोटी हैं कि मगरिब से इशा के बीच में आलमोस्ट 45 मिनट, खींच के 1 घंटा, यानी मगरिब से इशा 45 मिनट और इशा से फजर के बीच में 1 से 1.5 घंटा बस, यानी हमारी रात टोटल ये मगरिब से इशा और फजर, फिर सूरज निकल आया होता, जाता भी नहीं है पूरा। अल्लाह करे सूरज मेरा स्टूडेंट होता, छुट्टी ना करता गर्मियों में, तो फिर फजर हो जाती है, फिर फजर पढ़ते हैं 2:30 बजे 2:45 बजे, ऐसे टप टप करता दिन होता है। तो ईशा पढ़ने जाते हैं, इतनी रोशनी होती है जैसे आपके असर के बाद और मगरिब से पहले का वक्त होता है, बिल्कुल आप खोल के पढ़ सकते हैं भाई रोशनी में। अब वो कहते हैं जी ईशा जल्दी पढ़ लो, फिर लोगों ने ये हल निकाला कि अगर 2-2.5 घंटे सो जाएंगे चलो जल्दी करें, तो पिछले 2-4 वीक पहले जल्दी करवा दिया लोगों ने कि पढ़ के सो, कौन जागे फजर के लिए यूं। तो अब लोग सवाल हमसे बेचारों से पूछते हैं कि जी अब रोज़ा भी फिर उसी वक्त छोड़ें, अब दिल कह रहा कि आगे ले जाएं, पहले दिल कह रहा था पीछे ले जाएं। ये रूह है, लिखिए ईद उल अदहा की रूह क्या है। ईद उल अदहा की असल रूह ये है कि अल्लाह की खातिर पसंदीदा चीज़ को दिल की खुशी के साथ कुर्बान करना चाहिए। अल्लाह की इताअत में अलामत के तौर पे आप जानवर को ज़िबा करते हैं, असल मतलूब अना और ख्वाहिशात को कुर्बान करना, और अल्लाह ताला के अहकामात को बिला हीलो हुज्जत तस्लीम करना, और सबसे बढ़ के उस गुफ्तगु को याद रखना जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के बीच में हुई थी। हमने अपनी इसी सीरत इब्राहिमी का गालिबन Day 3 था, उस दिन पूरा ये वाक़या कुर्बानी के रुख पे बात की थी। हमारी बदनसीबी क्या है कि हम आज उस गुफ्तगु को भूल गए और बकरे और दुम्बे को याद रखा। जानवर को महज मजहबी त्यौहार के तौर पर ज़िबा करते हैं, जो नहीं करना, बल्कि उसके पीछे जो मौजूद मकसद है, जो अल्लाह की बात मानने का मकसद है, उसको सामने रखना, उसको ज़िंदगी में लाना। तो आप कह सकते हैं कि कुर्बानी क्या है, ये हमारी तरजीहात का इम्तिहान है, प्रायोरिटीज़ सेकंड नहीं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह शुड बी आवर सेकंड प्रायोरिटी, नो नो, लोग तो कहते हैं लीस्ट प्रायोरिटी, समझते हैं फ़र्क। फर्स्ट प्रायोरिटी दुनिया, माल, दुनिया दुनिया, उसमें सब डाल लीजिए जो भी बातिल है, जो गलत तरीके से आए, असल दुनिया तो बहुत अच्छी थी, हमने उसके प्रायोरिटीज़ को बदल दिया। सेकंड पे कौन, यानी सबसे पहले माल जान, फिर सेकंड पे बच्चे, तीसरे पे हमारे भाई बहन, चौथे पे हमारे ख़ानदान बिरादरी, अल्लाह को कई कोने घुसरे में डाल देते हैं, चलो ना कुछ तो हो, लीस्ट नहीं सेकंड भी नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी। ईद कुर्बान आपको मुझे ये सिखाता है कि हमारी तरजीहात में द फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह। नमाज का वक्त आ गया सब पीछे, रोजे का हुक्म आ गया सब पीछे, कुर्बानी का वक्त आ गया सब पीछे, अल्लाह के रास्ते में मेरी जरूरत पड़ गई सब पीछे। वो टूटी हुई टांगों के साथ चल पड़ते थे रींगते रींगते, वो नाबीना उम्मे मखतूम आंखें ना होने के बावजूद चल पड़ते थे कि मुझे साथ ले जाएं। आज हम तैयार बैठे होते हैं अपने आप को मजबूर समझने के लिए। हमारा हाल क्या है कि हम चाहते हैं कि बीमार हों तो अल्लाह करे रोज़ों में ही हों, ताकि रोज़े तो ना रखने पड़े। खुश होते हैं बीमारियों के आने पर। और सबसे बड़ी बात जो इसमें एक दूसरा मकसद है कि अपनी मोहब्बतों का जायज़ा लीजिए। हम सब अगर अपनी मोहब्बतों को देखें तो हमें क्या उसमें नज़र आता है, किस तरीके से आता है, क्या कुर्बान कर सकती हैं अल्लाह के रास्ते में, कभी आपने भी सोचा ही होगा। कितनी ज़रूरत है हमें अपने आप को चेक करने की कि मैं अल्लाह के रास्ते में क्या छोड़ सकती हूँ। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर आज भी वो सेम हुक्म होता जो इब्राहिम को मिला था, हुक्म भी नहीं था, इशारा ही था, हम सबको अपने पहलौटी के बच्चे को कुर्बान करना पड़ता या अपने सबसे छोटे को कुर्बान करना पड़ता। और आप पता अल्लाह के नबी की वो रिवायत कि मैं दो ज़बीहों की औलाद हूँ, सबको पता ही होगा वाकया। यानी एक तो आप इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, लेकिन जो आपके बाप थे ना अब्दुल्ला, उनको भी अल्लाह ने बाल बाल बचाया। बहुत तवील वाकया। अब्दुल मुत्तलिब बाप थे, अल्लाह ख्वाब दिखा रहा था कुछ चीज़ों में, और होते होते उन्होंने नहीं चाहा नहीं चाह कुछ चीज़ों को लिया। यानी वाकई इस वक्त कोर्ट नहीं कर रही ताकि बात दूसरी तरफ ना चली जाए, लेकिन उनके बदले 10-10 ऊंट करते करते 100 ऊंटों की दियत मुकर्रर हुई थी। तो अल्लाह ने अपने नबी को दुनिया में भेजना था। अल्लाह ने जिस बच्चे को पैदा करवाना होता है ना, अल्लाह ताला फिर उनके लिए सबाब पैदा कर देता है। तो अल्लाह के नबी के बाप बच गए तो आप भी आ गए। तो आपको मुझे ये सब दिखाया जा रहा है इसमें कि हम कैसे इन चीज़ों को लेंगे। और फिर एक और बात नोट करिए कि मादा परस्ती के बुत को तोड़ना है। आज हम जितने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, जिस मादा परस्ती से आज हम गुजरे हैं उसमें सच भी नहीं रहा, झूठा स्टेटस और झूठी कहानियाँ और वादा खिलाफियाँ भी होने लगी। तो सवाल पैदा होता है कि ईद उल अदहा के तकाजे क्या हैं, क्या तकाजा करती है। तो हम सब जानते हैं कि नहीं यनाल अल्लाह लहू मुहा वला दिमाउहा वला की यनालुहु तक्वा मिनकुम। अल्लाह ताला तक ना तो इनका गोश्त पहुँचता है और ना इनका खून पहुँचता है, बल्कि इस तक तुम्हारी परहेजकारी पहुँचती है। सूरत हज की आयत नंबर 37 से अल्लाह ताला ने आपको मुझे बता दिया कि खून तो ज़मीन में बह जाता है ना। पाकिस्तान में आपने देखा होगा गलियों से गुजरे तो खून का रंग दिखता है, कुछ दिन के बाद स्मेल आने लग जाती है। बिल्कुल इसी तरह से खून तो चला गया, गोश्त किधर जाता है, हम खा जाते हैं। चर्बी बेचारे गरीबों को मिल जाती है, हड्डियाँ और छिछड़े फकीरों को मिल जाते हैं, और राने जो हैं वो समधानों में और ससुरालों में पहुंच जाती हैं, और गोल बोटी का कीमा बन जाता है, और जो दस्ती के गोश्त हैं उसकी बोंग और नहारी बन जाती है और रोस्ट बन जाता है, और पुठ की बोटियों के अंदर पालक डालकर हम पालक गोश्त पका लेते हैं। खाइए, शौक से खाइए, कोई रोकता थोड़ी आपको। लेकिन अल्लाह को क्या पहुँचा, ये पूछने की बात है। सोचिए कि अल्लाह को ना हमारे जानवरों का गोश्त चाहिए ना खून। और रियायत क्यों उतरी थी कि अरब इस्लाम से पहले कुर्बानियाँ करके तो उसका जो खून था ना वो काबा की दीवारों पे लेप कर देते थे। ये रस्म थी क्योंकि वो दीन इब्राहिमी की बिगड़ी हुई शक्ल थी, और बुतों के आगे प्रसाद रख देते थे। तो अल्लाह ने नबी के जरिए कहा कि नहीं, गोश्त तुम खाओ, खून नीचे बह जाएगा, अल्लाह को तुमसे तुम्हारा तकवा चाहता है। असल में ये पैगाम है इस बात का कि खून मांगा जाए तो खून बहाया जाएगा, माल का सवाल आएगा तो माल दिया जाएगा, औलाद का सवाल हो तो औलाद पेश की जाएगी। वक्त और सलाहियतों की ज़रूरत होगी जब इस्लाम को, तो इनका बेहतरीन हक अदा किया जाएगा। क्योंकि अल्लाह को ना गोश्त चाहिए ना खून चाहिए, ना आपकी औलाद चाहिए, उसको तकवा चाहिए। और कुल इन्नस्सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन का खुलासा है ये एक रिचुअल। कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब रब्बुल आलमीन के लिए। ये अल्लाह की खातिर सब करने का जज्बा कुर्बानी के वक्त ताज़ा होता है। हम अपना माल कुर्बानी पर लगाते हैं। कुर्बान करना इस बात की निशानी है कि जैसे मैंने ये जानवर, ये मेरा माल तेरी राह में लगाया, अब मेरी ख्वाहिशात तेरे हुक्म पर कुर्बान होंगी, कभी मौका पड़ा तो मेरी जान भी तुझ पर कुर्बान होगी। तो इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बंदगी और आपकी कुर्बानी हमारे लिए अपना अपना तौहीद को खालिस करने का और अपने आप को सच्चा करने का पैगाम है। हम कहते हैं हम तौहीद परस्त हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, फिर तौहीद को सच्चा करने की क्या ज़रूरत है? हमने कह जो दिया था एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, जाके देख लो मजहब के खाने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है। लेकिन याद रखिए, इबादत करना सिर्फ रुकू और सजदे करने का नाम नहीं है। अल्लाह से मोहब्बत करना, अल्लाह से डरना, इसका हुक्म मानना, इसको राजी करना, ये सब कुछ इबादत में आता है। तीन दर्जे हैं इबादत के, हर साल ही सूरह फातिहा की तफसीर में बता देती होती हूँ अक्सर कि शायद फ़ायदा हो कि बंदगी क्या है। या कनाबुदु में तीन चीज़ें हैं, एक परस्तिश है रिचुअल्स, फिर गुलामी है और इतात है, यानी बंदा रब के आगे रिचुअल्स भी अदा करे नमाज रोज़ा हज ज़कात की तरह, फिर उसका हुक्म भी माने इतात। इस वक्त हमें सवाल सोचते हैं, रुकू करते हुए कभी नहीं सोचा कि इस तरह रुकने में क्या है भाई, क्या फ़ायदा होगा इस तरह मेरे झुकने से, अल्लाह को क्या मिलेगा, और ये सजदे में क्यों बीच रहे हो, ये घुटने नहीं मुड़ रहे फिर भी तशहुद में क्यों बैठी कर रहे, बल्कि उसमें तो ज़रा से 19-20 हो जाए तो फिक्र हो जाती है। ठीक है, सल्लु कमा रअइतुम उनी उसल्ली होना चाहिए, लेकिन जब बात आती है अमल की तो इताअत की, तो वहाँ बहाने सोचते हैं, वहाँ कहते हैं ये इस्लाम नहीं है ये कल्चर है, वहाँ कहते हैं ख़ानदान की मर्ज़ी के प्रोग्राम होंगे, बेटों की खुशियाँ बेटियों की खुशियाँ अल्लाह ने दे जो दिए तो अब इनको नाराज़ कैसे करूँ, अल्लाह नाराज़ होता है कोई बात नहीं हज पे जाऊँगी अगले साल, देखना कोरोना चला जाएगा अगले साल हज करूँगी सारे गुना माफ़, और हमें पता है वो हज के बाद अगले हज के गुना बीच के माफ़, होशियार भी बहुत हो गए हैं, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान की नेकियाँ कबूल होंगी, और ये रखा नहीं आज का रोज़ा दिल हज का, एक पिछले साल के गुना माफ़ एक अगले साल के माफ़ तो कर ले। गोया कि कुछ लोग अपने इस रोज़े में अगले साल के गुना प्लान करते हैं, आज एक रोज़ा मारे बांधे रख लो बच्चों, अगले साल खूब मौजें करना, एक साल तक तो तुम गुना प्रूफ हो गए हो। हालांकि आपको तब वो गुना जो इस सोच के साथ किया जाए कि ये बात मैं माफ़ करा लूँगा, वो गुना माफ़ ही नहीं होगा। वो किसी की बात सुन रही थी तो उन्होंने कहा जब मेरे पास इस्लाम की रूह नहीं थी ना तो मुझे बताया गया था इतनी दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लो, इस रात में ये इबादत कर लो तो ये सवाब तो ये, तो वो कहते हैं कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहता था, असल में मैं अपना सवाब गिन रहा होता था। वो दुरूद कहाँ रह जाता है, वो तो सवाब हो जाता है, जमा तफरीक का नाम इस्लाम बना दिया। आज बड़े दुख की बात है, अब हम सोचें कि हमने अल्लाह के साथ इस इबादत में कितने शरीक हैं, हम कितनों की इताअत करते हैं, कितनों की बातें मानते हैं, हमारी ज़िंदगी हमारे शौहर बच्चे फैशन ख्वाहिशात स्टेटस जॉब के गिर्द घूमने लग गई, उन्हीं के लिए जीते हैं उन्हीं के लिए मरना उन्हीं के लिए मेहनत उन्हीं के लिए दौड़ धूप, जबकि तौहीद सच्ची करना तो ये है कि अल्लाह तो मुझे सबसे बढ़कर महबूब है, ला महबूब इल्लल्ला ला मकसूद इल्लल्ला ला मतलूब इल्लल्ला। आपका ये कलमा पढ़ना ऐसे ही है जैसे आपने एक दिन निकाह के ऊपर बोलों पर कबूलियत की बात की थी, इसलिए कि आप जितना ज़्यादा शऊर के साथ काम करते हैं उतना ही फ़ायदा होता है। एक दफ़ा शादी करके तो बस शौहर के हकूक़ पूरे कर दिए और घर वालों को राज़ी कर लिया था, अभी तक नहीं निभा रहे और ये मरते दम तक निभने हैं, तो ये कुर्बानी आपको मुझे ये सिखाती है कि हम देखें कि हम खड़े किधर हैं, हम कितने पानी में हैं, हम अपने आप को अगर इसके साथ रखेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। और फिर इसी तरह से ये भी बात याद रखिएगा कि किसी और इंसान या मुआशरे की नहीं बल्कि मैं सबसे ज़्यादा ए अल्लाह तेरी नाराज़गी से डरती हूँ। दो लफ्ज़ हैं, कमाल अल हुब कमाल अल ज़ुल, इसको कहते हैं गायतुल हुब और गायतुल ज़ुल, ये दो चीज़ें मिलती हैं तो कलमा पूरा होता है। अल्लाह से मोहब्बत, तू सबसे प्यारा और तेरे से ज़्यादा किसी का डर नहीं कि नाराज़गी हो जाए। दूसरे लफ्ज़ों में कह ले कि तू मेरी ज़िंदगी का महवर है, फोकल पॉइंट है, ऐ अल्लाह मेरी ज़िंदगी तेरे इर्द गिर्द घूमती है, बस तुझे राज़ी करने में लगी रहती हूँ। ये 10 दिन जो आपके मेरी ज़िंदगी के थे ना, ये हमें पूरे साल का सबक दे के जाते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खातिर जीना है और उसी की खातिर मरना है। और याद रखिए कि सिर्फ कुर्बानी में सुन्नत इब्राहिमी को ही याद नहीं करना बल्कि उनकी तमाम कुर्बानियों और उनके हनीफ होने को दिल की तख्तियों पे लिखना, फिर समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, قربانیاں کرتے وقت تو ہم نے بکرے چھترے لے لیے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور پھر شو آف بھی کر دی، دکھاوا بھی بہت ہے، بتانا پڑے گا، پھر لوگ کہیں گے یہ قربانی کیسی کر رہے ہیں، اچھا انہوں نے نہیں کی، وہ نہیں کی، نہ نہ، آپ نے میں نے ان جذبوں کو یاد رکھنا ہے جن جذبوں کے تحت یہ کام ہوا تھا، اور اسی طرح سے پھر بڑی سے بڑی قربانی اللہ مانگے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ کر دیں۔ اللہ کی سنت بتا دوں آپ کو، آپ کٹنے پہ تیار، رب بچانے پہ تیار۔ اگر ابراہیم علیہ السلام وہاں ایفس اینڈ بٹس میں پڑے ہوتے ہیں نا تو واقعی اسماعیل نے کٹ جانا تھا، سچ بتا رہی ہوں۔ یہ جو آج آپ پر میں اپنی اس دنیا میں اور مادہ پرستی کے جال میں اپنے آپ کو جکڑے بیٹھے، اپنی اولادوں کو ہم نے گوڈے گوڈے پھنسا دیا، پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے برانڈیڈ کپڑے خرید کے رکھتے ہیں، ہم نے تو اپنے بچوں کو بھی مادہ پرست بنا دیا، وہ بھی پیسے میں تولتے ہیں چیزوں کو، ان کے آنے سے پہلے ان کے کمرے سے جا کے بٹھا دیا، پھر وہ ابراہیم کیسے بنے، پھر وہ اسماعیل کیسے بنے؟ نام تو ہمارے اسماعیل اور ابراہیم کے ہوں لیکن تربیت کے اندر اتنا مبالغہ ہو تو نہیں۔ ہم اس موقع پہ یہ سیکھتے ہیں کہ خود بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا ہے اور اولادوں کو بھی اسماعیل علیہ السلام کی طرح تربیت دینی ہے، اور بڑی سے بڑی قربانی کے بعد بھی دل میں عاجزی رکھنی ہے اور اسی طرح قبولیت کی دعائیں کرنی ہے۔ اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ عید الاضحیٰ پر کرنے کے کام کیا ہیں۔ سب کو پتا کہ عید کے دن کی سنتیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، ماشاءاللہ بہت سارے اس پہ پوائنٹ جمع ہو چکے ہیں کہ عید کے دن غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، صاف کپڑے پہننا اور اسی طرح نماز ادا کرنا یہ، لیکن آج کا موضوع روح اور تقاضے ہیں، اس لیے اگر کوئی چیز نہ ہوئی تو بعد میں بات کر لیں گے۔ اگر آپ روح والی عید منانا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا، مخلص، خالص اللہ کے لیے، بکرا چھترا خریدنا خالص اللہ کے لیے، قربانی دینی ہے خالص اللہ کے لیے، کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے ایک پوائنٹ پرسنٹ بھی کسی کا شائبہ ہو۔ صحابی میں سے کسی نے آ کے پوچھا، اللہ کے نبی ہم جاتے ہیں میدان جنگ میں لڑتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نام ہو، ویسے ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں ہوتا ہے کہ چلو شہرت بھی ہو جائے، کچھ مال غنیمت مل جائے، کہا نہیں، پھر تیرا اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے وہ جس میں تجھے ایک پینی کا کسی چیز کے نفع کا فائدہ کی امید نہ ہو۔ پھر اس طرح قربانی کی روح کیا ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھیے، دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھیے۔ آج بھی اپنے ملکوں میں تو بہت سارے، ادھر بھی بہت ہے، کئی ایسے لوگ ان کے سیدھ کا جوڑا بھی نہیں ہوگا، آپ کو نہیں چاہیے کسی اور کو لے کر دے دیں، اپنے نئے دھلے ہوئے کپڑے صاف کیجیے، ایکسٹرا کپڑے دے دیجیے، کتنے ہی غریب ہوں گے، اور اپنے ملک والوں کے لیے تو میں کہتی ہوں ان کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، ہر روز نیا جوڑا پہنے اور پچھلا صدقہ کر دیں، پر جان نہ چلی جائے ہماری، کیونکہ وہ قربانیاں جو اور ہجرتیں اور جو مجاہدے کیے ہوتے ہیں ایک جوڑا بنانے میں، وہ نہیں ٹکنے دیتے، پیسے تو نہیں، وہ محنت، کتنے چکر لگائے بازاروں کے اور درزیوں کی منتیں کی، تو کیا میں فوراً دے دوں؟ چار کو سال تو اس کو ہینگ کروں گی نا ہینگر میں، اس کو پھانسی چڑھاؤں گی، پھر اس کے بعد دوں گی کسی کو، ابھی کیسے دے دوں؟ اسی طرح سے جانوروں کی قربانی سے پہلے اپنی خواہشات اور انا کو قربان کرنا، یہ بھی اس کی روح اور تقاضے میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے بہترین جانور خریدنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو پیار سے رکھنا چاہیے۔ اب جانور خریدنے کے بارے میں 101 سوال ہر سال ہم پوچھتے ہیں اور دو دن کی ہماری میموری ہے بس، عید کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، ہے نا، وہ پوچھ لیں گے اگلے سال پھر بتا دیں گے۔ ہر سال لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مرنے مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں کہ نہیں، ہر سال لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دی جا سکتی کہ نہیں، ہر سال یہ سوال پوچھتے ہیں لوگ کہ ایک ہی قربانی ہے یا بیوی الگ کرے، اچھا وہ جاب کرتی ہے تو اس کی الگ ہے، بچوں کی الگ۔ بھائی آپ کی میموری اتنی کمزور ہے، بادام کھائیں، کیونکہ وہ وقت وہ ڈنگ و ڈنگ ٹپاتے ہیں ہم، جو علم آپ کلاس روم میں بیٹھ کر لیتے ہیں وہ کبھی نہیں جاتا۔ میں نے بھی سوال جواب بھی صرف لوگوں سے پوچھے ہوتے تو مجھے بھولتا، اور ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ، اور واٹس ایپ ٹیچر جو آپ کا شیخ واٹس ایپ ہے تو وہ آپ کو ہر طرح کے فتوے دینے کو تیار ہے، ابھی ایک جملہ پڑھ کے پورا نہیں فارغ ہوتے، ایک اور ٹپ آئی وہ کہتے نا 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 نا، ایک کہتا ہے بالکل کرو، دوسرا کہتا ہے مکروہ ہے، تیسرا کہتا ہے کرنا ہی حرام ہے، ایسا الجھ گئے آپ، کیونکہ آپ کا استاد کوئی نہیں ہے، خودرو پودے ایسے ہی ہوتے ہیں، میں ایسے کئی خودرو پودوں کو جانتی ہوں، پھر وہ خود بھی بھٹکتے ہیں دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں، چوں چوں کے مربع ہیں ہم۔ تو بہرحال عمل کرنے سے پہلے علم لینا ضروری ہے۔ फिर सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करनी है, मिलजुल कर खाना होता है। कुर्बानी करने का तरीका ही ख़ास, कोशिश करे जिसने करनी है वो अपने हाथ से करे। हम ख़वातीन तो ज़ाहिर ऐसे हैं, फ़र्ज़ तो नहीं है लेकिन ये रिचुअल्स होते हैं, इसमें कोई फतवे नहीं है। लेकिन कुर्बानी अव्वल वक्त पे कीजिए, पहले दिन में करें, ज़्यादा अजर होगा इंशाल्लाह। और महंगी कुर्बानी अगर लेनी पड़ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, ये क़यामत के दिन तुलेगा, इसका गोश्त, इसकी लीद, इसका पेशाब तक तुलेगा। हम इधर रहते हैं सारा साल, इधर गोश्त खाते हैं और ईद पे भी इधर ही लेके खाएंगे। कुर्बानी करनी है तो कहते पाकिस्तान भेज दो, सस्ता होगा गोश्त वहाँ। बाज़ लोगों की सर्च ये होती है किस मुल्क में कुर्बानी सस्ती है, चलो यमन में भेज देते हैं, चलो सीरिया भेज देते हैं। ठीक है, मैं कोई मना नहीं कर रही, लेकिन कभी अपने लिए भी तसी करें, तो जो अपने लिए वो दूसरों के लिए। फिर ज़रा कुर्बानी का गोश्त उनको भी खिलाइए जिनके यहाँ कुर्बानी ना हुई हो। अफसोस की बात है कि हम सारा साल भी खाते हैं और ईद के दिन फिर हमें रान्ने और गोश्त और कीमा ही आता है, और वो गरीब जो सारा साल नहीं खा पाते इल्ला माशाल्लाह, उनको इस दिन भी छिछड़ों मिला गोश्त ही मिलता है। और कई को तो उस दिन भी नहीं को लोग याद रखते। एक तो ना फकीर बन के आ गए, आपके दरवाजे ही तोड़ दें, वो तो ले जाते हैं कुछ आपसे गालियों के और बदतमीजियों के साथ, लेकिन घरों में गरीब रिश्तेदार हैं, दीजिए। और आप हम सब इधर हैं ना, आपको अपनी कुर्बानी दिलवानी है, बेस्ट तरीका आपको देती हूँ। आपकी फैमिली का कोई गरीब, कोई चचा ताए पुप्पो मामू का कोई बेटा बेटी किसी के घर में गुर्बत है, आप अपने कुर्बानी के पैसे उनको दे दें कि आप कर लें, आपकी भी हो जाएगी। एक तो उनकी है ना को नहीं होगा, वो दूसरों को ज़रूरी थोड़ी बताना, वो कुर्बानी करेंगे, खुद भी खाएंगे, दूसरों को खिलाएंगे, उनको भी तो टेस्ट कराइए ना कि कुर्बानी करना कैसे। उनके बच्चों के हाथों में भी बकरे की रस्सी हो और वो फेर रहे हो कि ये हमारा कुर्बानी का जानवर है। फिर इसी तरह से कुर्बानी करते वक्त इस जज्बे को याद करना जिसके तहत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अकलौते बेटे के गले पर छुरी फेरने लगे थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम की इताअत और माँ बाप से फर्मा बरदारी का सबक याद कीजिए। अपने बच्चों को भी ये कहानियाँ सुनाएं लेकिन साथ बाप की भी नेकियाँ बताएं। अल्लाह ताला के लिए आजी और शुक्रगुजारी का जज्बा रखते हुए कुर्बानियाँ कीजिए कि उसने हमें तौफीक दी। हम कुर्बानी करने वालों में कई लोग हैं वो तो बेचारे करते भी नहीं, उनको गोश्त ही मिल जाए तो बड़ी बात है, ये भी एक इबादत है। फिर आखिर में चंद बातें कि क्या ना करें, बस मैं तो एक जुमला बोल के भी ख़त्म कर दूँ ना कि किन कामों से बचना है, तो हर वो काम जिससे अल्लाह नाराज़ होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी का खुलासा भी यही था, उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे बाद में उनको जाकर फिर कोई ऐसा काम करना पड़े कि जिससे वो फिर अपना वो गुनाह माफ़ करा लें। लेकिन ख़ास तौर पे ईद के नाते से जो हमारे कल्चर में चीज़ें मारूफ हो चुकी हैं, तो उसमें एक रियाकारी है, बड़ा बकरा मोटा बकरा, नमूदो नुमाइश है, शो ऑफ है। फिर इस सुन्नत की अदायगी में बुखल से बचना, नहीं नहीं कुर्बानी क्या करनी है, हॉस्पिटल बना दो, डैम बना दो। लोग पूछते हैं ना कुर्बानी तो जानवरों को दे, आज ये आपको पता है कि मुसलमानों पे हमला है कि हमारे जो रिचुअल्स रह गए हैं बाकी उनको भी ख़त्म कर दो, और लोगों की ईदें कुर्बानियाँ क्रिसमस और वैलेंटाइन और इसी तरह हॉलोविन तो आम मशहूर से मशहूर होता जाए, और हम मुसलमान जो करते थे कुर्बानियाँ वो भी हमारी कुर्बानियाँ पीछे हो जाए। दिल खोल के कुर्बानी कीजिए, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं जानवर, कीजिए। फिर इस सुन्नत की अदायगी में नागवारी का मुजाहरा नहीं करना, गंद बड़ा पड़ता है, स्मेल आती है, और अच्छा किसी और को ही दे दो तो हमारे बच्चे तो खाते ही नहीं। फिर इसी तरह इसमें ना करने के कामों में कुर्बानी के जानवर और गोश्त की तस्वीरें अपने स्टेटस पर दिखावे के लिए ना लगाइए। आप सोचिए ज़रा, बिलफर्ज किसी ने आपको गिफ्ट देना हो और सबको दिखाए मैं ये दे रही हूँ, मैं ये दे रही हूँ, और उसका आसान सा तरीका सबके बीच स्टेज पे बुलाकर आपके हाथ में गिफ्ट बैग दे दे, और पहनाते हैं ना सास को कड़े स्टेज पे बिठा के, वो तो मेरे लिए गवाह बनाते हैं ना कि बाद में सास मुकर ना जाए, कोई गड़बड़ हो गई तो पता चला कि दिए थे जी, मूवी भी बनी हुई है। चले हिफाजती इकदाम के तहत तो फिर स्टेज पर बना के दे दें, और लोगों को भी पता चले कि ये औरत कितनी कम ज़र्फ निकली कि जिनकी बेटी और उनका जिगर का टुकड़ा लेकर आई, साथ उनके कड़े भी छीन के ले आई। और नंदों को भी पहनाओ कुछ चूड़ियाँ, ज़रा इनको भी रखो हाथों में, कुछ करो, ये क्या है दिखावा है। और आपने अपनी बहू को देना है घर में दीजिए, आप स्टेज पे जाकर के उसके गले में डालते हैं। और ये जो हम शादियों पे जाते इतने बड़े बड़े बक्से उठाकर, और घर वाले को मुश्किल पड़ी है, दिखाना होता है ना, और अब बक्से नहीं लेते तो वो लिफाफा वहाँ क्यों देते हैं, माँ तो बेचारी परेशान है, वो तो गिरा देगी इधर उधर, फिर उसके लिए भी वो पिंजरा डाल के पीछे पीछे फिरते हैं। घर से जाते हुए भी कहते बड़ा सा पर्स रखना अम्मा, थैले और लिफाफे मिलने हैं। और इसका एक तरीका निकाला किसी ने, आप ना इस पे अमल कर लीजिए। उन्होंने स्टेज के पास एक बड़ा खूबसूरत पिंजरा सा रख दिया, वो गल्ला नहीं होता जैसे तोता जिसमें डकते हैं, तो उसमें का थैले में डाल दें, ये सिक्योर पास एक मासी बिठा दी। क्या मुश्किल है, आप बाद में दे दें। मैं आपके घर शादी पे जाऊं, मैं तो कुछ नहीं लेके जाऊंगी, मैं आपको मुश्किल क्यों डालूं, मैं बाद में दे दूं, पहले दे दूं। बहू को पहली दफा देखा, इसको कुछ देना क्यों भाई, दोबारा देखने में मुश्किल होगी। कोई बच्चा देखे, कई लोग जाते नहीं घर में, बच्चा 6 माह का हो जाता है, कहते अभी उसका तोहफा नहीं लिया। करते हैं ऐसे काम, किसी के घर नहीं जाते, नहीं कुछ देने के लिए हाथ में नहीं, हाउस वार्मिंग नहीं होगी, ये बेकार ही आता है। देखिए तोहफे और रस्म में यही फर्क है, फर्क लिख लें आपको शायद कहीं फायदा हो। तोहफे की उम्मीद नहीं होती, अनएक्सपेक्टेड होता है, और रस्म की उम्मीद होती है। पहले से घर से पूरी तैयारी के साथ जाते, मुसल्ला होकर के हमें तोहफे मिलने हैं, बर्थडे पे तोहफे मिलेंगे, पार्टी में तोहफे मिलेंगे, तो ये रस्म है। बहरहाल तो ये दिखावा ना कीजिए। फिर इसी तरह कुर्बानी के दिन काम के दौरान थकन और बेजारी का इजहार नहीं करना, ये तो आप सारे वादा करें। ऐसी ऐसी शक्लें बनाती हैं औरतें अल्लाह के, वो मर्द के हलक से नीचे कैसे उतरे। बेगम का मुंह देखकर वो कहता है बेगम तुम जाके सो जाओ थोड़ी देर। और फिर जब चिड़चिड़े होते हैं, फिर सीरी भी हमने बुननी, हमने पाए भी बुनने, हमने बहुत कुछ भी करना है, यहां तो अब ना कर सकेंगे लेकिन बाहर वालों को तो करना पड़ता है। और सुबह से कि जब वो फ्रीजर में संभालना भी है, कुछ ईजी रहिए, कुछ आप खाइए, कुछ दूसरे खाएं, जो मिल गया ठीक। कुछ के घरों में जितनी लड़ाइयां ईद के गोश्त पे होती हैं उतनी नहीं होती, वो कहते हैं बांटना है, वो कहते हैं घर में रखना। फिर इसी तरह कुर्बानी के गोश्त को सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, ये कोई राज नहीं है जो आप शेयर नहीं कर सकते, दूसरों को खुश दिली से दीजिए, आपका भी हक है। वो कहते हैं ना निजी बकरे के 3 हिस्से, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, गरीबों के लिए। अपने लिए गोल गोश्त बोटियां, दूसरों के लिए हड्डी मिला गोश्त, और गरीबों के लिए वो खाल और पाए और सिरी। हर चीज के 3 हिस्से कीजिए फिर आप, ठीक है। फिर इसी तरह से नेकी के कामों को खुद तक महदूद ना करना, दूसरों तक पहुंचाना। अगर आपको कोई नेकी का मौका मिल जाता है तो दूसरों को भी दावत दीजिए। मसलन ईद की नमाज है, आपके प्यारे नहीं पढ़ते, आपके खानदानों में रिवाज रस्म नहीं थी, बताइए इस्लाम आपको कहता है अच्छा ईद के दिन मिलिए जुलिए घुलिए, एक दूसरे के घर जाइए बुलाइए। लेकिन बताकर प्लान करके और अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो कितना अच्छा लगता है अगले को। हमारे पाकिस्तान में क्या आता है, औरतें सारा दिन किचन में, और चाय आ रही है और शीर खुरमे और सेवैयाँ और पकते हैं। अब वो औरतें किचन में रहती हैं, मर्द ड्राइंग रूम में रहते हैं, और मेहमान मज़े से आते हैं और खाते पीते रहते हैं। शाम को पता चलता है जोहर भी नहीं पड़ी, बिलीव मी। और जिन औरतों को बेचारियों को ईद की नमाज पे ना लेकर गए, वो बेचारियाँ क्या करेंगी, उनकी क्या ईद हुई। वो कहते ईद गैस और गंदे कपड़े, और गर्मी भी होती है बहुत, पसीने, नया जोड़ा पहन ले तो काम कैसे करें, पुराने पहन ले तो लोग कहेंगे ये मासी है कि बीवी है। तो इसका आसान हल, आप सब एक कम्युनिटी में रहते हैं, ये मैंने चीज़ अटलांटा से सीखी थी 2-3 साल पहले, वहाँ जब दौरे कुरान हुआ और उसके बाद फिर ईद भी वहाँ मनाई। आपके साथ भी मेरा मैं एक आध ईद मना चुकी हूँ, याद है ना। तो बात मुझे उनकी अच्छी लगी थी, इसलिए मैं हर जगह वालों को कहती हूँ, और बाहर से जो हमारे साथी सुन रहे हैं उनको भी मशवरा है। सबसे पहली बात यह कि नमाज के लिए जाइए, आप भी जाएं, बच्चे भी जाएं, घर के नौकर भी जाएं। मुझे बचपन से जो मंजर आंखों में है, एक दिन हमारे घर का ताला लगता था, हमारे भी और नाना के भी घर का, जिस दिन ईद थी घर के नौकर मासियां बच्चे सब जाते थे, क्योंकि ईद सबकी होती है। इवन वो औरतें जिनको नमाज की छुट्टी है वो भी जाएंगी, हदीस है, पीछे बैठेंगी और बाद में दुआ में शामिल होंगी। तो आप अगर मुहज्जब तरीके से ईद के लिए नमाज के लिए जाते, साफ कपड़े पहनते, साफ कपड़े पहनिए, शावर लीजिए, हत्तुल वसा नया कपड़ा पहन ले, नहीं है तो पहला व इस्तेमाल शुदा कोई भी साफ कपड़े पहनिए। तो बाहर अलिया के ईद के लिए निकले, अब वो क्या करते हैं कि टाइम बांध दिया, जैसे जहां ईद की नमाज पढ़ी हमने, वहां जब रहे किसी मस्जिद वालों की तरफ से कोई रेस्टोरेंट था, उसके साथ कम्युनिटी के कुछ लोग या इदारे इंस्टीट्यूट मिलकर पैसे जमा करते हैं, फ्री ब्रंच जो कहते हैं, जहां हमने नमाज पढ़ी। खुली जगह पे पढ़नी होती है, मैदान है, हॉल है, बफे लगा हुआ था पीछे, वही जो हमारा टिपिकल हल्का सा नाश्ता, हलवा पूड़ी का और हल्की सी निहारी। तो जो आए बिस्मिल्लाह करे खाए, और बाहर भी उन्होंने एंट्रेंस के करीब एक बॉक्स रखा था कि अगर आप इस खाने में हिस्सा डालना चाहें तो डाल दीजिए, लोग अपनी खुशी से डालते हैं। देखिए ना, जिनका यहाँ कोई भी नहीं होता, हर एक की फैमिलियां तो नहीं। अब नॉर्वे में मैं देखूं सारा साल वो लोग जो आपके साथ रहते हैं, ईद वाले दिन वो पूछते भी नहीं आपको, क्योंकि उनके खानदान फैमिलियों में मगन है। तो वही बात है कि खून के रिश्ते तो आगे ही होते हैं। ऐसे जो अकेले तो अकेले हैं ना, उनकी ईद हो जाती है। तो वो वहां इहतमाम किया। मैंने 10 साल तकरीबन ह्यूस्टन में नमाजें ईद की पढ़ी हैं, जितने साल रही हूँ वहां। ईद से पहली रात हम लोग मिलके सैंडविच बनाया करते थे, एग्स बॉयल करके, मायनीज और वो जो कुछ डालते हैं, तो ब्रेड के अंदर डाल के स्लाइस और साथ एक एक डोनट, तो वो पैकेट्स भी बना के फिर बच्चों के लिए गिफ्ट्स पैक बनते थे, तो जो ईद की नमाज पढ़ने आते थे उनको देते थे। एक कम्युनिटी की बात है। इस पे आप अगर मिलके जमा करते, खर्च करते हैं किसी भी जगह, तो कोई बुरी बात नहीं। तो इस तरीके से रहे। फिर उसके बाद क्या कि वहाँ आपने किया, अब उसके बाद जैसे मिसाल है कि सुबह 8 से 10 बजे तक ईद की नमाज हुई, ये सारी एक्टिविटी, मिल लें, कोई नहीं जा सकता तो ना जाए, जो गए हैं उनको तो खुशी होगी। वहाँ से हम निकले तो किसी एक सिस्टर के घर का टाइम इन लोगों ने दिया हुआ था कि 10 से लेकर तो शायद 11 के बीच में उन्होंने अपने घर में, उसको कहते हैं ओपन हाउस, अब आप किसी का भी नाम ले ले, ABCD, उनके घर में 10 से 11 ओपन हाउस है, खुली दावत है, सारे शहर सहेलियों में से जो भी आना चाहे आए उसी वक्त में। और उन्होंने खुद से अपनी को प्यारों को भी बुलाया होता है उसी वक्त में, उसमें भी करीबी लोगों ने वन डिश में हेल्प की होती है। अब आप उठे तो गए, वहां खाना लगा हुआ है, दो घर थे, एक ये घर है तो एक साथ कोई और था, एक में मर जाते थे एक और में, हम सारे खा रहे हैं पी रहे हैं मजा के। जो ही 11:15 के करीब टाइम हुआ तो फीलिंग आनी शुरू हो गई कि लपेटा लपाटी शुरू हो रही है, चलो जी। उधर पता चला कि 11 से 12 या बीच में आधा घर, फलां सिस्टर के घर 2 घंटे हैं, अब ये सिस्टर फारिग है, इधर ये होस्ट थी, लोगों ने खाने खाए पकाए मिले, ये भी साथ तैयार हुई तो हम सारे दूसरे घर, यानी वो बिल्ली की तरह 7 घर फिरे हमने। बिलीव मी, वो बचपन की ईदें जो मैंने इंजॉय की है, बहुत अच्छा मुझे लगा था। तो फिर किसी के घर पहुंचे, जहां लंच का टाइम होता है घर वाले ने लंच किया होता है, आपको ये सारा दिन 7 घर ना फिरना चाहे तो कम से कम अपने घर में 2 घंटे ऑक्यूपाइड है, अपने प्यारों को बुला लिया। लंच में गए तो किसी एक सिस्टर के घर लंच था, तो उन्होंने कहा कि इस लंच पे आ जाएंगे सब लोग, अब उनके लोग वहां बैठे हुए थे तो हम भी गए। अब आपका दिल चाहे खाएं ना खाएं, आप कहते इतना कैसे खाएं, तो कुछ जरूरी थोड़ी कि हर जगह खाएं और हर चीज खाएं, रखा हुआ है वो, जैसे बफे में हमारा ख्याल होता है कि सारा कुछ हमारे ही लिए बना है, तो फिर वो साथ पक्की और चूरन भी लेके जाए, वो पेट पे मलना पड़ेगा, खा तो सकने की जगह नहीं है। तो इस तरह करते कराते हमारा दिन अच्छा गुजरा। फिर शाम जब हुई ना, तो उन्होंने एक हॉल में कम्युनिटी की तरफ से गेट टुगेदर था फैमिली, उसमें भी यही होता है कि सब पैसे डालकर कोई जगह से खाना ऑर्डर करते हैं, तो डिनर तक यकीन करें सुबह ईद के लिए निकलने से लेकर रात आने तक मुझे जिंदगी में इतना मजा नहीं कभी आया जितना मुझे उस ईद का मजा, आज भी मैं उसका जिक्र कर रही हूँ। और इसलिए कह रही हूँ कि घर वाला भी फारिग, आप भी फारिग, वरना क्या होता है कौन आ जाए कौन ना आ जाए, कब आ जाए, आप सो रहे हैं पता चला मेहमान आ गए, मामा उठ जाओ मेहमान आ गए, और आप कहीं गए हुए हैं तो लोग कह रहे हैं जी कि हम आपके घर आए थे। अच्छा तरीका है, महजब तरीका है। और ये बात सारो आजकल तो एक मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे तो सारे शहर को पता लग जाता है, और आए मिले, वरना पता क्या होता है जो आप लोग रोज मिलते हैं आप ईद पे ही नहीं मिलते, कैसा लगेगा आपको। ये उन लोगों के लिए होता है जिनका कोई यहाँ ना हो या हो, तो खुशी के नाम पे इस तरीके से ईद को मिलिए, मिलाना मिलना मिलाना भी सुन्नत है, इसमें भी अच्छा लगता है। आप ईद, हमारी तो ईदें 3-4 दिन जाती, ईद टरू फिर मरू फिर चरू फिर पता नहीं गरू पता नहीं क्या है, तो आप ये 3-4 दिन रोज मिलिए, आप कहिए, आप दावत दीजिए कि मेरे घर उस वक्त कोई आए, मेरे घर उधर, कोई जरूरी नहीं कि आप फिर वो कतलम्मे ही बनाए, आप फ्रूट रख दीजिए, आप चाय रख दीजिए, आपका दिल चाहता है किसी का तो कुछ भी खाना भी ना बनाए। और ये सबसे अच्छा होता है कि जिसका घर है वो कुछ ना बनाए, दूसरे ही ले, ये भी एक अच्छा आई कि वो घर ही साफ कर कर आ ले और जगह बैठने की कर दे तो हुआ। तो ये वही बात है कि जी और जीने दो, खुश और खुश होने दो, ईद के दिन दूसरों को भी खुशी का मौका देना चाहिए। तो बहरहाल ये कि इस तरह प्रोडक्टिव ईदें होती हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदा के लिए ईद के दिन अपने बच्चों को बोर ना होने दें, सो सो के गुजार दिया, वो सुबह चुके जल्दी उठे होते हैं तो फिर जाके दोपहर में सब नाश्ता करके सोते हैं, आधा दिन सोए रहते हैं, ये गलत है। आज हमारे बच्चे जिन मुआशरों में जी रहे हैं वहां ऐसे बहुत सारे फंदे हैं जिसमें फंस कर उनको अब ईद के दिन अच्छे नहीं लगते। फिर इसी तरह ना करने के कामों में एक है कि शायर अल्लाह का मजाक ना बनाइए, मसलन कुर्बानी के जानवरों के लतीफे नहीं बनाने चाहिए, कुर्बानी के जानवरों को तकलीफ ना दी जाए। आज ये भी एक अजीब सी बात है, लोग जोक बेचकर आप अपने ऊपर हराम कर लें, इतना बड़ा लफ्ज बोला मैंने, आपने कोई ऐसी पोस्ट आगे फॉरवर्ड नहीं करनी जिसमें बकरे का मजाक, कुर्बानी का मजाक या सो ऑन कुछ भी हो। फिर इसी तरह ईद उल अदहा की जब तैयारियां होती हैं तो आपने तो कुछ कर कराई ली होंगी, लेकिन एंडिंग बातें यही आपके लिए मेरे पास कि अगर आप कहते आपने कह दिया सफाई नहीं करनी तो फिर आप गंदा ही पड़ा रहे, ये भी नहीं सफाई करें तो तहुरु शत्रु लिमान की नियत करें। तो ईद के लिए घर की सफाई के साथ नियत और दिलों की सफाइयाँ करते जाए, यानी काम करते रहें हाथ लेकिन दिल अल्लाह की तरफ। आज के दिन में भी आप घर को साफ करते हैं, अगर अपने आप को सेटिंग करते हैं कल मेहमान आने हैं कीजिए, कोई मना नहीं, लेकिन साथ साथ दिल साफ करते हुए उन लोगों को फ़ोन करके बुलाते रहें जिनके लिए आपके दिल गंदे हैं। क्योंकि हमारा मसला यह है कि आज हमारे एक इंस्टीट्यूट में या एक माशरे में रहते हुए इतनी मशीनें और फ्रिजें ख़राब नहीं होती जितने हमारे दिल ख़राब होते हैं, इतने ऑरेंज खट्टे नहीं होते जितने हमारे दिल खट्टे हो चुके होते हैं। तो इस मौके पे साथ साथ मैसेज करके और फ़ोन करके अपने उन प्यारों को बुलाइए जिनसे आप नाराज़ हैं, जो आपसे नाराज़ हैं। इस तरह दीनी और दुनियावी फ़राइज़ की पहले से बेहतरीन मनसूबाबंदी करें, अभी से लिख के घर पर बड़ा बड़ा लगा दें कि ईद वाले दिन भी नमाज़ें होती हैं और जमात पे होती हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, इन सारी नमाजों के वक्त रखिए। जो कल आपके घर में ईद के मेहमान आए उनके साथ मिलकर नमाजों का एहतमाम कीजिए, मर्दों को मस्जिद में भेजें ताकि मस्जिद की भी ईद हो जाए। फिर इसी तरह अल्लाह के हकूक के साथ बंदों के हकूक भी चलेंगे। तो ये रूह और तकाजे हैं जो हम निभाते जाएंगे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को सारा दिन डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमारा दीन वो खूबसूरत दीन है कि जो वाकई कोई मौका जाने नहीं देता। उन्होंने हिजरत की, घर छोड़े, तो हम थोड़ी देर के लिए अगर मेहमानों को छोड़कर मस्जिद चले जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। इसी तरह आप पे कुछ जिम्मेदारी है अगर, तो उसको निभाने के लिए अगर 19-20 करना पड़े तो कीजिए, और इसी तरह से उस ख़ानदान को याद करते हुए अपने घर घराने को होम स्वीट होम बनाइए कि अल्लाह जिस तरह वो पाकीज़ा घराना था हमें भी अपने घर वालों के साथ इसी तरह की ज़िंदगियां बसर करने की तौफीक दे। और अल्लाह सिर्फ ईद का दिन नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर मोड़ पे कुर्बानियाँ दूंगी, जान निसारी, तस्लीम व रज़ा, अखलास और तकवा की रूह पैदा कर दे अल्लाह, ये दो में शामिल करें। और अल्लाह अपने रास्ते में सब कुछ लुटा देने का जज्बा मेरे दिल में डाल दे, और ख़ास तौर पे मिल्लत इस्लामिया को गैरों की नक्काली से बचने की बचाने की दुआएं भी करनी है और अपनी तारीख को ज़िंदा करना। हम अपनी ईदों को भी अब गैरों के तौर तरीक़ों पे मनाने लग गए, और ये जो ईद की नमाज़ होती है ना, ये इज्तमाही तौर पे अल्लाह ताला के नाम को बुलंद करने और मुसलमानों का एक दूसरे से मिलने का एक इजहार भी होता है। ईद का जब जाएं, यहाँ सुन्नत यह है कि आप एक रास्ते से आएं तो दूसरे से जाएं, पैदल जाते थे ताकि मैक्सिमम लोगों से इंटरेक्शन हो, रस्तों में तकबीरात पढ़ें। आज भी घर जाकर घरों में तकबीरात चलाइए, पढ़िए। अब मसला क्या हो गया, हर चीज़ रेडीमेड मिल गई, तकबीरात दे दी जाए, पढ़िए भी चलाइए भी और जैसा भी मुमकिन हो। और इस पे एक लेक्चर है हमारे पास पिछले सालों में, आप सुन लीजिएगा, उसका नाम है ईद या वईद। अगर साथी किसी भी लिंक पे उसको डाल दें तो उसके खुलासे पे अपनी आज की बात को पूरा करती हूँ। उर्दू तर्जमा एक पोएम है बहुत प्यारी कि लैसा लईदु, ईद उसकी नहीं जिसने नए कपड़े पहन लिए, बल्कि ईद तो उसकी है जो अजाब से डर गया। ईद उसकी नहीं जो इत्रियात से खुशबू हासिल करे, बल्कि ईद तो उसकी है जो ऐसी तौबा करे कि फिर गुनाह की तरफ ना लौटे। ईद उसकी नहीं जो आराइशी दुनिया से मुज़य्यन हो, ईद उसकी हिजरत को ज़ादे राह बना ले। ईद उसकी नहीं जो कीमती सवारी पर सवार हो, ईद उसकी है जिसने गुनाहों को तर्क कर दिया। ईद उसकी नहीं जो ईद मिलन पार्टियों के दस्तरखान बिछाए, ईद उसकी है जो पुल सरात से सलामती से गुजर गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमसे कबूल करे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्किही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या रहमुर राहिमीन, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।